अष्टोत्तर श्री श्री मधीर डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी All glory to Sri Guru and Gauranga. सब लोग मेरे पीछे बने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद् गीता थारूप अध्याय कितना नौ अध्याय नौ श्लोक संख्या ग्यारह अच्छा श्लोक संख्या ग्यारह। आप लोगों में से कितने लोगों के पास किताब है? हाँ बताइए। अच्छा ठीक है। जिनके पास किताब ने भी मेरे पीछे बोल सकते हैं। भगवान के शब्द हैं, बहुत सरल हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं मजानन्तो मम भूत महेश्वरम् अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं मजानन्तो मम भूत महेश्वरम् अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तन्माश्रितं परं भावं मजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। कुछ लोग बोल सकते हैं, और कोई? अच्छा शब्दार्थ बोलिए। अच्छा कितने बजे तक करना है? 9 बजे? नौ? यहाँ घड़ी नहीं सामने कोई? रिस्ट वॉच दे दीजिए, रिस्ट वॉच रख दीजिए अपने टाइम देखने के लिए। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। अब जानन्ति उपहास करते हैं माम मुझको मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति मानुषी मनुष्य रूप में तनम शरीर आश्रितम मानते हुए परम दिव्य भावम स्वभाव को अजानन्तः न जानते हुए मम मेरा भूत प्रत्येक वस्तु का महा ईश्वरम परम स्वामी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। बहुत सरल है ना, फिर भी शब्द क्या है भगवान के? अब जानन्ति, नहीं नहीं अभी दोहराना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। अब जानन्ति का मतलब है कि जानन्ति का मतलब जानते हैं, और अब का मतलब है कम तुच्छ, है ना। अब का मतलब अवर है ना, तो मुझको जो है तुच्छ मानते हैं। अब जानन्ति का मतलब है जानन्ति से कम, जितना जानना चाहिए उससे कम समझते हैं अब जानन्ति, है ना। अब जानन्ति माम मूढ़ा मूर्ख मुझको मानुषी तनुमाश्रितम मनुष्य शरीर के आश्रित मानते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर का आश्रय लिया है, है ना। हम लोग तो मनुष्य का शरीर आश्रय, हमें हमने मनुष्य के शरीर का आश्रय लिया है। मनुष्य शरीर नौका के समान है जो भवसागर को पार करेगी। हमारे लिए तो ठीक है, कह सकते हैं भाई हमने मनुष्य के शरीर का आश्रय लिया है, वही मनुष्य का शरीर नौका के समान है, अगर सही उपयोग किया जाए तो बहु समुद्र को पार कर आ सकती है, है ना। लेकिन भगवान भगवान को सोचते हैं कि मनुष्य का शरीर मनुष्य के शरीर का आश्रय लिया है, है ना। मानसीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो, अजानन्तो माने नहीं जानते, है ना। अब जानन्ति हैं, गलत समझते हैं मुझको। अजानन तो परम भावम, परमेश्वर के भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, मैं समस्त प्राणियों का महाईश्वर हूँ, इस बात को नहीं जानते हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिल प्रभुपाद देखी तात्पर्य तीन पेज का है, काफी लंबा तात्पर्य है, तो हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे इस तात्पर्य को। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यदि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते, जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वो मनुष्य नहीं हो सकता, है ना। तो ये बात जो है पिछले श्लोक में भी भगवान ने बताई, हरि बोल, पिछले श्लोक में भगवान ने बताई है क्या कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर सब शरीरों का निर्माण करती है, मेरी अध्यक्षता में, है ना, भगवान की अध्यक्षता में करती है। तो कोई मनुष्य थोड़ी हो सकता है, है? पूरी प्रकृति का ना सोचिए नियंत्रण करने वाला, पूरी प्रकृति का नियंत्रण करने वाला, और प्रकृति कितने जीवों के शरीर बनाती है ना, और हर समय बना रही है, कितने गिन भी नहीं सकते हैं, चर अचर उत्पन्न कर रही है ना। और ये कृष्ण की अध्यक्षता में सब कार्य हो रहा है, सोचिए, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन और संहार करता हो वो मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। कहा जाता है, कहते हैं, खूब खुल करके कहते हैं कि भाई कृष्ण जो है हमारे तरह एक मनुष्य थे, हाँ उनके अंदर हमसे कुछ ज्यादा गुण थे, जैसे विवेकानंद हुए, गांधी जी हुए, उसी प्रकार से कृष्ण भी एक महापुरुष है ना। तो ये भी कृष्ण की निंदा है, वो तो सोचते हैं अपने हिसाब से कि हम कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई कृष्ण जो है अच्छे व्यक्ति थे, कोई गुणवान व्यक्ति थे, और कोई महापुरुष थे, गांधी जी जैसे, विवेकानंद जैसे, हैं। ये क्या है, प्रशंसा है, निंदा, निंदा है, कृष्ण की निंदा है, है ना। तो प्रभुपाद देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। पुरुष का मतलब मनुष्य, हमारी तरह मनुष्य हैं भाई, हमारे अंदर जितनी शक्तियां हैं उनके अंदर ज्यादा हैं शक्तियां, लेकिन वो भी एक जीव है, एक मनुष्य है कृष्ण भी, है ना। तो ये निंदा है, और थोड़ी निंदा नहीं, बहुत ज्यादा निंदा है। कुछ तो जाना मतलब इतनी निंदा करते हैं कि अपने से भी ज्यादा बुरा मानते हैं कृष्ण को, है ना, सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं कृष्ण, सबसे ज्यादा बुरे हैं वो, तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये भी जो है ना मानना कि भाई कृष्ण है, हाँ अच्छे हैं, हमसे अच्छे हैं, ये भी मतलब पर्याप्त नहीं है कृष्ण के, है ना, किसी को इससे जो है मतलब पर्याप्त नहीं है जानना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, आदि परम पुरुष हैं, जबकि जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः, ये परम ईश्वर है, है ना। तो इस लोग में भगवान कहते हैं, मम भूत महेश्वरम, परम भावम अजानन्तो, परम भाव को नहीं जानते हैं, मम भूत महेश्वरम। तो प्रभुपाद लिखते हैं, ईश्वर है, परमा है, कृष्ण है, ये ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता में प्रारंभ ही होता है इसी, ईश्वर है, परमा है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, है ना। आगे ईश्वर या नियंता अनेक है। आप प्रभुपाद क्या करें कि भगवान तो कहते हैं मम भूत महेश्वरम, महेश्वरम ईश्वर नहीं, महेश्वरम या ब्रह्म संहिता में परमेश्वरम, परम ईश्वर, है ना, केवल ईश्वर नहीं, है ना। तो प्रभु बोलते हैं ईश्वर या नियंता तो अनेक है, है ना। तो अगर कृष्ण को ईश्वर कहा जाए तो ये विषय पर्याप्त नहीं है, ईश्वर या नियंता अनेक हैं, और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री होता है, फिर उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है, है ना। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है ना। सब ईश्वर। अब राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भी नियंत्रित है, हैं? अगर आप कहें कि नहीं राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं है, तो नहीं है। कि चुनाव चुनाव में फिर वो भी है ना, उसका भी जो है पत्ता कट जाएगा, है ना। तो कोई भी जो है मतलब नियंत्रक नहीं है, सब नियंत्रित हैं। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है, परमेश्वर मतलब जिनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, ये कृष्ण ही है। ऐसे बाकी कोई भी ईश्वर परमेश्वर नहीं है। ईश्वर है, नियंत्रण कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कुछ दंडा लगा हुआ है।
शंकर जी
परमेश्वर कृष्ण है, ठीक है ना, और कोई नहीं है, परमेश्वर कृष्ण ही है। तो हर व्यक्ति के ऊपर जो है नियंत्रण है, कोई भी जो है मतलब परमेश्वर नहीं है, है? निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परमः कृष्णः तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। सच्चिदानंद रूप है, कृष्ण का रूप कैसा है, सच्चित आनंद। तीन चीजें हैं, सत का मतलब सनातन, चित का मतलब ज्ञान, और आनंद का मतलब सब प्रकार के रस, है ना। तो कृष्ण के शरीर में है, अभौतिक है, यानी भौतिक नहीं है शरीर। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वो भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। पिछले श्लोकों में तो अगर एक ही श्लोक देखें, पिछला श्लोक, तो उसमें भी क्या था, कैसे कार्य हैं, कि उनकी अध्यक्षता में प्रकृति चरचर सब प्राणियों का निर्माण कर रही है ना। तो प्रभु कहते हैं ये भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते हैं, कि कृष्ण का शरीर अगर भौतिक हो, है ना। तो कुछ लोग जो है मानते हैं कृष्ण का शरीर भौतिक है, तो भी बहुत अज्ञान है। भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। तो मूर्ख लोग मनुष्य मानते हैं, और कृष्ण भी इस बात की चिंता नहीं करते कि मूर्ख लोग मुझे मनुष्य मानते हैं तो मैं जो है उनको समझाऊं, दिखाऊं कि मैं मनुष्य नहीं हूं। कृष्ण को चिंता नहीं है, कृष्ण भी जो है अपने को छिपाए हैं। तो जो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है वही कृष्ण को समझ पाता है कि वे भगवान है ना। जैसे कि प्रधानमंत्री को अगर कोई नहीं जानता है तो प्रधानमंत्री को थोड़ी चिंता होती है कि ये जो मजदूर हैं ये लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं इनको बताऊं कि भाई तो मुझे नहीं जानते, जान लो कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। उसका थोड़ी काम कोई रुका हुआ है ना। तो मूर्ख लोग कृष्ण को जो है परमेश्वर नहीं मानते, सामान्य मनुष्य मानते हैं, या मनुष्य से कुछ बढ़ करके मानते हैं, या और नीचे मानते हैं, कुछ भी मानते हैं। तो कृष्ण को इस बात की चिंता नहीं है कि वे क्यों मानते हैं, उनको नहीं मानना चाहिए, भाई बताओ उनको, मेरे बारे में बताओ। तो कृष्ण को ये सब चिंता नहीं है, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उनका शरीर यहाँ मानुषीम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। ये गोपाल तापनी उपनिषद 1:1। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं, तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। गोविंद के दो अर्थ हैं, गोविंद के दो अर्थ हैं, गो का एक अर्थ होता है गाय, दूसरा अर्थ होता है इंद्रियां, और इंद्र का मतलब है जो आनंद प्रदान करें, है ना। तो गौओं का आनंद प्रदान करें, इंद्रियों का आनंद प्रदान करें, है ना। तो भक्तों की सभी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं कृष्ण, है ना, इसलिए गोविंद कहलाते हैं। भक्तों को तो अन्न प्रदान करते हैं, है ना गोविंद। फिर सच्चिदानंद विग्रहम तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है, गोपाल ताप निर्विशद 1:35। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। अब यहाँ पर ऊपर जो हमें समझा रहे हैं ये बड़ी चेतावनी है, हमें समझना चाहिए। गीता के भी टीकाकार हैं, गीता के भी विद्वान हैं, है ना। तो ऐसे बहुत से तथाकथित विद्वान या भगवद्गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं, है ना। तो मतलब ये नहीं सोचना कि नहीं गीता की टीका है, गीता की टीका लिखी है तो जितनी गीता की टीका लिखी है वो सब जो है सही हैं, ऐसा नहीं है, है? गीता की बहुत सी टीकाएँ हैं, है? लेकिन गीता की वही टीकाएँ सही हैं जो परंपरा के अनुसार हैं। जैसे प्रभुपाद ने ये गीता की टीका लिखी है, इसे परंपरा दी है ना, परंपरा दी है, है? और ये कौन सी परंपरा है? ब्रह्म संप्रदाय है ना। तो कृष्ण से ही जो है उसी से परंपरा चली आ रही है, उसी में उन्होंने गीता की व्याख्या की उस परंपरा के अनुसार। तो अगर परंपरा के अनुसार नहीं है टीका, तो चाहे कोई व्यक्ति जितना भी विद्वान हो लेकिन वो जो है सही नहीं है, आप समझ रहे हैं। और तरह तरह की व्याख्याएं भी करते हैं गीता की लेकिन वो सही नहीं है, है ना। चाहे कोई बहुत बड़ा नेता हो, या कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, गीता की टीका अगर कर रहा है उसकी कोई परंपरा नहीं है तो उसकी टीका सही नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कैसे अनेक तथाकथित विद्वान और भगवद गीता की टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं, गीता की टीका में ही उनका उपहास करते हैं, गीता की टीका में उपहास करते हैं। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति राधा कृष्णन हुए तो उन्होंने गीता की टीका लिखी, जहाँ कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सद्धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ, तो उस टीका में ही लिख रहे हैं, हैं कि हमें कृष्ण की शरण नहीं लेना। देखो ऐसे ऐसे विद्वान हैं क्योंकि कोई परंपरा ही नहीं है, है ना। तो हमें कृष्ण की शरण नहीं लेना है, कृष्ण के अंदर कोई अजन्मा वस्तु है उसकी शरण लेना है। अब कृष्ण के अंदर कुछ अलग है और कृष्ण के बाहर कुछ अलग है, है ना, एक अज्ञान है। कृष्ण के अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं, हमारे अंदर और बाहर में अंतर है। अंदर आत्मा है जो अविनाशी है और जो बाहर है शरीर वो नश्वर है, है ना। कृष्ण के अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं, तो ये अज्ञानी है, वे गीता की टीका लिख रहे हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि गीता कृष्ण के शरीर के अंदर और बाहर कुछ अंतर नहीं है, कृष्ण के शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि कृष्ण को सामान्य पुरुष समझकर उनका उपहास करते हैं, भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो। हाँ, तो पूर्व पुण्यों के कारण उनका जो है बचपन से ही बड़े अच्छे उनके संस्कार हैं और समझने की शक्ति है काफी, और शास्त्रों का जो है उन्होंने अभ्यास कर लिया काफी अच्छा, या संस्कृत के श्लोकों का भी काफी अभ्यास कर लिया, है ना। लेकिन तो भी वे कृष्ण को नहीं समझते, है ना। जैसे एक श्लोक है, पारंगतोपि वेदानां सर्वशास्त्रार्थ विद्यपि योन सर्वेश्वरे भक्तस्तम विद्यात् पुरुषाधमम्, कि समस्त वेदों का उसने पार पा लिया और सब शास्त्रों के अर्थ को भी जान लिया, लेकिन तो भी कृष्ण का भक्त नहीं है, तो उसको क्या है समझो, तन विद्यात् पुरुषाधमम्, पुरुषों में अधम है, मनुष्य में अधम है। तो ऐसे लोग जो है कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं, भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। कैसी धारणा? सामान्य पुरुष, कृष्ण को सामान्य पुरुष समझना, जैसे कृष्ण के शरीर को भौतिक मानना, कृष्ण का शरीर भी हमारे शरीर की तरह पांच भौतिक है, ये मानना है ना। इसीलिए वो मूढ़ कहलाता है, मूढ़। तो भगवान कह रहे हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा, कि मूर्ख लोग मुझको नहीं जानते कि मैं परमेश्वर हूं। तो यहां पर भगवान का इशारा उनके लिए भी है जो गीता की टीका कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, गीता की टीका करने वाले जो विद्वान है उनको भी भगवान मूर्ख ही कह रहे हैं, कि गीता की भी टीका कर रहे हैं लेकिन मेरा जो है वो तत्व तो नहीं जानते, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इसीलिए वह मूर्ख कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसीलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, तीन चीजें हैं। सच्चिद आनंद है ना, सत का मतलब सनातन है ना, और चित का मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद पूर्ण आनंद है ना, सनातन है और पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते इसीलिए उनका उपहास करते हैं। आगे ये मूर्ख ये भी नहीं जानते कि जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं। हम लोग जन्म लेते हैं भौतिक शक्ति के प्रभाव में और हमको भौतिक शरीर प्राप्त होता है, लेकिन कृष्ण का शरीर भौतिक शक्ति के प्रभाव में नहीं होता है ना, उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति के स्वामी है, जैसा कि अनेक स्थलों में कहा जा चुका है मम माया दुरत्या। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है किंतु वो उनके बस में रहती है। तो भगवान की जो माया है तो उससे कोई भी छूट नहीं सकता, मुक्त नहीं हो सकता, सब बंधे हैं उनकी माया से, है ना। लेकिन कृष्ण नहीं बंधे उस माया से, क्योंकि वो कृष्ण की ही माया है हाँ। और कृष्ण के शरण में जो आए तो माया से अपने आप छूट जाएंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं है माया से छूटने का। माया किसी से रिश्वत नहीं लेती हाँ। ऐसे जेल में तो ऐसा हो जाता है ना कई बार कि जेल को रिश्वत दो तो वो जो है जेल से किसी प्रकार निकाल देगा, लेकिन माया ऐसी नहीं है, रिश्वत नहीं लेती, क्योंकि कृष्ण की वो पूर्ण समर्पित शुद्ध भक्त हैं। तो आगे प्रभुपाल लिखते हैं और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के बस से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। माया का शरीर, हम लोगों का जो शरीर है वो माया से बना है, तीन गुणों से बना है, भौतिक तत्वों से बना हुआ है ना। जब कृष्ण के अधीन है माया तो कृष्ण का शरीर कैसे माया से निर्मित हो सकता है, कृष्ण का शरीर कैसे भौतिक हो सकता है, कृष्ण का शरीर तीन गुणों से निर्मित कैसे हो सकता है ना। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं अतः कृष्ण विषय की ऐसी धारणा मूर्खता पूर्ण है। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण को भगवान ना माने तब तक उसको गीता की टीका नहीं करना चाहिए। आप समझे, तब तक उसको गीता को समझाने का कोई अधिकार नहीं है, गीता पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है, है ना। तो ये बड़े दुख की बात है कि ऐसे लोग गीता की पर चर्चा करते हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, और जहाँ कृष्ण कुछ कहते हैं गीता में ये है तो यदि कृष्ण तो ये कहा लेकिन मेरा विचार ये है, है ना। कितने मूर्ख है, आपके विचार का क्या महत्व है, जहाँ कृष्ण कुछ बात कह रहे हैं गीता में आपके विचार का क्या महत्व है। मैं तो ये नहीं मानता, कृष्ण तो ये कहा लेकिन मैं ये नहीं मानता, मेरा विचार तो ये है, उसमें सुधार करते हैं ना, मूर्ख है। कृष्ण की गीता में, कृष्ण के शब्दों में कृष्ण का ये विचार है, ये हमारा विचार ये है, आप सबका अपना अपना विचार है, मूर्ख है। कृष्ण के विचार के सामने हमारा विचार क्या है? कुछ नहीं है। अपना विचार आप मिलाते हैं कृष्ण के विचारों में तो पूरा दूषित हो जाता है, सब दूषित हो जाता है ना। इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम क्या दिया? भगवद गीता थारू, कि अपने विचार नहीं मिलाए। हाँ, तो इसीलिए इससे लोग कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, कृष्ण के शरण ले रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद यही कहते थे कि मेरी अगर कुछ योग्यता है या मेरा कुछ गुण है तो यही कि मैंने अपने विचार इसमें नहीं मिलाए, तो वही शुद्ध भक्त होता है जो कृष्ण के विचारों को जो है शुद्ध रूप में देता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, फिर भी मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं, है ना। सूक्ष्म है परमाणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु, तो प्रत्येक परमाणु का भी नियंत्रण करते हैं, और ब्रह्मांड सबसे बड़ी बहुत बड़ा आकार ब्रह्मांड का है ना, तो ये पूरे ब्रह्मांड का भी नियंत्रण करते हैं और सूक्ष्म परमाणु का भी नियंत्रण करते हैं कृष्ण, है ना। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनके विचार शक्ति से परे होते हैं, कोई नहीं सोच सकता। बृहत्तम माने सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड। और सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा परमाणु, है ना। तो उनके विचार शक्ति से परे हैं, वो नहीं विचार कर सकते, सोच नहीं सकते कि परमाणु कितना छोटा होता है और ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है, विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे ये सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को और अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, असीम का मतलब वही सबसे बड़ा और ससीम का मतलब सबसे छोटा, किंतु इस जगत से विलग रहते हैं। कौन? कृष्ण। नियंत्रण भी करते हैं और सबसे अलग भी हैं, सबसे अलग हैं। उनके योगम ऐश्वरम या अचिंत दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं। ससीम का मतलब छोटा, सबसे छोटा, और असीम का मतलब सबसे बड़ा, एक साथ दोनों नियंत्रण करते हैं, है ना। तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग ये सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। आगे सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद हैं, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। तो भगवान सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए, कैसे? जैसे वसुदेव उनको जो है छिपा करके ले गए, है ना। तो भगवान क्या दिखा रहे हैं? कि वे डरते हैं कंस से, कंस को पता ना चले वसुदेव छिपा करके ले गए। तो ये क्या है? सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए, है ना। गोकुल में लीलाएं कर रहे हैं, है ना। तो कैसे लीलाएं कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, मक्खन की चोरी कर रहे हैं, है ना। माता यशोदा उनको बांध देती है, है? और खेलते हैं सखाओं के साथ, खेलते हैं, गऊ में चराते हैं, है? ये सब क्या है? सामान्य मनुष्य की भांति, है ना, प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। श्रीमद् भागवत में 1:1:20 जब सोनक आदि मुनियों ने सुद गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत में क्यों उन्होंने पूछा? सोनक आदि ऋषियों ने पूछा, सनक आदि ऋषियों ने पूछा, किससे पूछा? सूत गोस्वामी से। और किसके बारे में पूछा? कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा। तो उन्होंने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा क्या? कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गुढ़ा कपट मानुषः। बहुत सुंदर श्लोक है ये कि भगवान ने जो है इसमें, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की। हाँ, और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। क्या मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं लेकिन अति मर्त्यानी कर्माणी कृतवान, अति मर्त्यानी कर्माणी कृतवान। अति मर्त्यानी का मतलब मनुष्य जिनको सोच भी नहीं सकता ऐसे कर्म के। अति मर्त्यानी, एक तो मर्त्य कर्म होते हैं मतलब जो मनुष्यों के सामान्य मर्त्यानी, अति मर्त्यानी कर्माणी है ना, कृतवान है ना, अति मानवीय कार्य किए, अति मानवीय कार्य किए। आगे मनुष्य रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे चार भुजाओं से युक्त थे। अब देखो कैसा आश्चर्य है कि बालक जब जन्मा तो कितने भुजाएं थी बालक की? चार भुजाएं थी बालक की, चार भुजाएं थी बालक की, और नग्न नहीं था बालक, वस्त्र धारण किए। सोचिए बालक ने जन्म लिया, माता के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, कैसे जन्म लिया? वस्त्र धारण किए हुए और आभूषण, चार भुजाएं, प्रसन्न मुख, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए है ना ऐसे। किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। और फिर ये भी उनका एक गुण ही है, ये भी उनकी योग्यता है कि उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर लिया, नग्न बालक बन गए। अभी चार भुजाओं का बालक था और सब कुछ टिप टॉप है, और फिर जो है एक नग्न बालक दो भुजाओं का बालक हो गया। अब शंख चक्र गदा पद्म सब गायब हो गए और दो भुजाओं का नग्न बालक हो गया है ना। बभूव प्राकृतः शिशु, बभूव यानी बन गए, प्राकृतः शिशु प्राकृत बालक बन गए है ना। तो ये भी तो आश्चर्य की बात है, ये थोड़ी कि नहीं ये तो अब जो है मतलब उनके अंदर कोई कमी थी, ये भी उनका एक विशेष गुण है, किसी के दो भुजाएं हैं तो चार भुजाएं नहीं हो सकती, किसी के चार भुजाएं तो दो भुजाएं नहीं हो सकती है ना। भागवत 10:3-46 में वे एक सामान्य शिशु एक सामान्य मानव बन गए। तो बन गए लेकिन वो है नहीं है ना, बनना और होना अंतर है ना। तो कृष्ण है नहीं सामान्य शिशु या सामान्य मानुष, लेकिन वो बन जाए तो ये उनका उनका गुण है, जीवन का गुण है कि वो बन गए है ना। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर भी ये इंगित करता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है, यही गुण है, गुण है, ये बहुत बड़ा गुण है। सोचिए कि जो है ना कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मतलब चाहता करना है, मान लो भारत का प्रधानमंत्री है तो कोई मजदूर का काम थोड़ी करेगा वो है ना। कृष्ण जो है मतलब अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है तो उसे मनुष्य का अभिनय करते हैं है ना। तो ये भी गुण है, ये भी उनका बहुत बड़ा त्याग है ना। गौ में चरा रहे हैं, नंद महाराज की गौ चरा रहे हैं, जबकि क्या है अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। तो ये क्या है उनका गुण है, गहराई से देखो तो गुण है और गहराई से ना देखो तो कहेंगे गौ में से आते हैं क्या कैसे हो सकते हैं भगवान? जैसे किसी व्यक्ति को देखे गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, भारत का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? तो कोई व्यक्ति अपनी भौतिक बुद्धि से सोचेगा, अरे गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, ये जो सामान उठाता है, सामान ढोता है, रिक्शा चलाता है ना, भारत का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? कृष्ण जो है गौ में चराने वाले ब्रज में कैसे हो सकते हैं भगवान, है ना? लेकिन भगवान का गुण, ये भगवान का गुण है कि गौ में चराते हैं, है ना? तो गहराई, जितनी गहराई से देखो तुमके गुण दिखाई देंगे, है? और मूर्खता से अगर देखो तो क्या दिखाई देगा? कोई गुण नहीं है, सामान्य है, सामान्य से भी नीचे हैं, है ना? तो ये है, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है ना? वो दिखा रहे हैं कि कंस डरे, कंस छेप करके रहते हैं गोकुल में, कंस को पता नहीं चला कि कृष्ण का जन्म हुआ, छिप करके वहां से भाग गए, है ना? आगे भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की, तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन। अर्जुन ने जो विश्व रूप देखा ना, और विश्व रूप से बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, तो अर्जुन ने फिर क्या कहा? तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र बाहो भव विश्व मूर्ति। अभी आपकी हजार भुजाएं हैं, मैं बहुत डर रहा हूं, आप चार भुजाओं में बनी, है ना? इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। फिर चतुर्भुज रूप में भी जो है, अर्जुन ने फिर कहा कि नहीं नहीं, इससे भी मुझे शांति नहीं मिल रही, आप दो भुजाओं में आइए। फिर दो भुजाओं में आ गए कृष्ण, तब अर्जुन कहा हाँ अब मैं मतलब प्रकृतिस्थ हो गया हूं, अपने स्वभाव में आ गया हूं, स्वाभाविक मेरा जो है स्वाभाविक स्थिति मेरी हो गई है, है ना? तो प्रभुपाद लिखते हैं मानुषम रूपम, अर्जुन ने क्या कहा? मानुषम रूपम, आपका मनुष्य रूप देख करके मैं अपने स्वभाव में आ गया हूं, है ना? आगे भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है, कौन ऐसा कर सकता है? दो भुजाओं, चार भुजाएं, चार भुजाओं से असंख्य भुजाएं, अनंत बाहुम, हजार भुजाएं नहीं, अनंत बाहुम, है ना? और फिर अनंत भुजाओं से फिर चार भुजाएं, चार भुजाओं से फिर दो भुजाएं, है ना? आगे कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, है ना? श्रीमद् भागवत के निम्न लिखित श्लोक 3:29-21 को ये सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अब श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, क्या? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है, ना? तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, तो इससे उनको मौका मिलता है कि भगवान तो भाई जो है सबके अंदर हैं, सबके अंदर हैं भगवान, है? तो अलग से कोई भगवान नहीं है, और कृष्ण को हम भगवान नहीं मानते, क्यों? भागवत में तो ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्तुतः, मैं सब प्राणियों के हृदय में आत्मा या परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। तो फिर भगवान तो जो है सबके अंदर है, फिर बाहर नहीं हो सकते, अलग से नहीं हो सकते, कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, है ना? तो प्रभुपाद लिखते हैं अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें। वैष्णव आचार्य क्या बताते हैं इसकी व्याख्या? ना कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से, तो मूर्ख लोग, ये भी मूर्ख लोग हैं। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को पकड़ लेते हैं, और श्रीमद् भागवत में ही कृष्ण की कितनी महिमा है, कितने गुण है, उनके रूप का भी वर्णन सब कुछ हुआ है, एक श्लोक को पकड़ लिया, ना 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 हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, श्रीमद् भागवत में तो ये लिखा है कि भगवान तो सब जीवों के हृदय में स्थित है, ना? तो ये मूर्ख है। तो आचार्य लोग कैसे बताते हैं? जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चर अचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। सब प्राणों के हृदय में जो परमात्मा है वो कृष्ण के क्या है? अंश है। जबकि वो जो है परमात्मा को भाई मान, जिन सामान्य व्यक्ति क्या मानेगा कि भाई ये जो है श्रेष्ठ है, ये सब प्राणी के हृदय में स्थित है परमात्मा, वो श्रेष्ठ है और कृष्ण तो सीमित है एक स्थान में, एक व्यक्ति है, तो कृष्ण तो सीमित है और वो परमात्मा सीमित है तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है ना। लेकिन जीव गोस्वामी क्या कहते हैं कि नहीं, वो परमात्मा कृष्ण के अंश है, किसने अपना विस्तार किया, अपना स्वांश विस्तार किया सब प्राणियों के हृदय में, तो श्रेष्ठ कौन है, कृष्ण श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वो वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। तो यही बात भागवत में लिखी है कि तम अवज्ञा माम मर्त्या कुरते रचा विडम्बनम, कि अर्चा की पूजा का केवल ढोंग कर रहा है मंदिर में और दूसरे प्राणियों का सम्मान नहीं करता, है ना। आगे भगवत भक्तों के तीन प्रकार हैं, जिनमें से नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं किस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। क्या समझे, अन्य भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं, अर्चा विग्रह का सम्मान करते हैं, अन्य भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं, है ना। ये क्या है, नव दीक्षित भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए, इससे रक्षा नहीं होगी, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान जो है आपकी पूजा नहीं स्वीकार करेंगे, भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं और आप अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, आप फूल चलाते हैं, लेकिन अर्चा विग्रह के रूप में भगवान क्या मानते हैं, ये मुझको अग्नि के अंगारे क्यों दे रहा है, है ना। तो भगवान नहीं उसकी पूजा स्वीकार करते हैं, है ना। आगे भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है, इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है वैसे उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक, हाँ ये हो गया, अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उचित सम्मान, उचित सम्मान में ये हो सकता है कि भाई किसी का ज्यादा सम्मान करें, किसी का कम सम्मान करें, और किसी का आप संग ना करें, दूर से ही उसकी उपेक्षा करें, ये भी है, उसका आप संगति भी ना करिए, उसकी उपेक्षा करिए, है ना, ये भी हो सकता है, इस तरह से भी सम्मान होता है किसी का, है ना। आगे ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं, वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखे हैं। बहुत लोग हैं अभी तर्क देते हैं, क्या देते हैं तर्क, कि भगवान अगर सब जगह है तो फिर मंदिर मंदिर क्यों जाते हो, भगवान तो सब जगह है, कहते हैं सर, यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर में अर्चा विग्रह में नहीं है। अब उनके तर्क का उत्तर क्या है, अगर सब जगह है तो क्या मंदिर में नहीं है, और मंदिर में आप उनके दर्शन कर सकते हैं और उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, इसलिए भगवान जो है मंदिर में अपना दर्शन दे रहे हैं, सर्वत्र है लेकिन सर्वत्र आप नहीं देख सकते उनको। आगे यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त ये जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गुरु वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति के विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में पूरी बात बताई गई, गोलोक एव निवसति कि गोलोक धाम में ही निवास करते हैं, और जब आते हैं पृथ्वी में तो गोलोक धाम से आते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, लेकिन समस्त प्राणियों के अंदर भी उन्होंने अपना विस्तार किया है ना। तो प्रभुपाद का यहाँ तात्पर्य समाप्त हुआ और अभी कुछ समय है हमारे पास में, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न, हाँ बोलिए। हम लोग भी कृष्ण के अंश हैं, लेकिन हम भिन्न अंश हैं और जो परमात्मा है वो स्वांश है, स्वांश। तो कृष्ण के दो प्रकार के अंश हैं, एक तो स्वांश और दूसरे भिन्नांश। हम जीव भिन्न अंश हैं कृष्ण के, है ना। तो हम भिन्न अंश होने के कारण बहुत ही अणु हैं, है? बहुत सूक्ष्म है, और हम इस शरीर में बंध गए हैं। कृष्ण की सेवा को छोड़ करके हम आ गए, इसमें बंध गए हैं। लेकिन कृष्ण ने अपना अंश विस्तार किया है, स्वांश विस्तार किया है अपना परमात्मा के रूप में। तो वे परमात्मा कृष्ण से अलग नहीं है, है ना। ये परमात्मा कृष्ण के अंदर, कृष्ण से अलग नहीं है। वे परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, लेकिन वे जो है जीव की तरह कष्ट नहीं भोग रहे हैं, जीव की तरह माया से नहीं बंधे हुए हैं, वो माया के स्वामी हैं। कृष्ण है माया के स्वामी है, हृदय के अंदर परमात्मा वो भी माया के स्वामी है, है ना। लेकिन कृष्ण ने अपना विस्तार किया है परमात्मा के रूप में, ताकि ये जीव को सही निर्देशन दें। अगर जीव जो है चाहता है, है? किस भौतिक जगत में मैं सुख नहीं पा रहा हूं और मुझे सही दिशा चाहिए जहां मैं सुखी हो सकता हूं, तो हृदय के अंदर परमात्मा उसको सही दिशा देते। और जब तक वो जीव सोचता है कि मैं यहां सुख भोग सकता हूं, तब तक जीव हृदय के अंदर परमात्मा है, लेकिन वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी इच्छा में सहयोग दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, गलत काम करने की भी अनुमति दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। लेकिन शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, जिम्मेदार तुम ही हो, गलत काम कर रहे हो तुम। आप समझ रहे हैं? तो कृष्ण जो है मतलब परमात्मा के रूप में सब जीवों के साथ हैं, उनके मित्र की तरह हैं, लेकिन वो तब तक उसको दिशा नहीं देते हैं, सही दिशा नहीं देते हैं जब तक जीव नहीं चाहता है। जीव स्वतंत्र अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, भगवान ने स्वतंत्रता दी है जीव को, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्वतंत्रता सौंप देता है भगवान को कि अब मैं आपके नियंत्रण में कार्य करूंगा, आप मुझे नियंत्रण कीजिए और मुझे सही दिशा दिखलाइए, मैं भ्रमित हूं, मैं अपना सुख नहीं जानता, मैं अपना कल्याण नहीं जानता, आप मुझे बताइए। तो हृदय के अंदर ही परमात्मा उसको मिला देते हैं किसी साधु के आचार्य, है ना, उसको सही दिशा मिलती है। और कोई प्रश्न? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो आज के तात्पर्य में प्रभुपाद ने चर्चा की है कुछ ऐसे भक्तों की जो अर्चय विग्रह की तो पूजा करते हैं, अर्चय विग्रह की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे प्राणियों का सम्मान नहीं करते हैं, है? तो उनकी अर्चय विग्रह की पूजा कैसी है? व्यर्थ है, अर्चय विग्रह की पूजा व्यर्थ है। इसलिए हमारे इस्कॉन में अर्चय विग्रह की पूजा करने के लिए जो पुजारी नियुक्त किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? ज्यादा उन्नत, जब भक्ति में ज्यादा उन्नति करें, है ना, जब उनको ब्राह्मण दीक्षा मिल जाए, है ना, तो उनसे आशा की जाती है कि उन्होंने भक्ति में ज्यादा अनुभूतियां प्राप्त कर ली हैं, है? तब वो अर्चय विग्रह की पूजा करें, है ना। इसलिए और जो कुछ जो लोग कृष्ण के मनुष्य लीलाओं को देख करके, कृष्ण मनुष्य लीलाएं करते हैं, है? और उसमें हर तरह की लीलाएं हैं, है? जैसे कि गौ में चराते हैं और जो है कभी डर के भागते हैं, शत्रु के सामने डर के भागते हैं, ऐसी लीलाएं हैं। तो इन लीलाओं को देख करके जो मूर्ख लोग हैं वो कृष्ण को क्या मानते हैं? साधारण मनुष्य मानते हैं, है ना। तो कृष्ण को क्या इस बात की चिंता होती है कि वो नहीं, वो मुझे माने उनको नहीं? क्यों 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 चिंता नहीं होती? जैसे उदाहरण दिया मैंने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को चिंता थोड़ी होती है ये कितने मूर्ख लोग हैं, वो जो है नहीं मानते हैं कि प्रधानमंत्री है। कितने मूर्ख हैं वो, कहे मैं नहीं मानता कि कोई भारत का प्रधानमंत्री है, अगर हो तो मेरे सामने बुलाओ। कोई मूर्ख कहे कि मैं नहीं जानता भारत का कोई प्रधानमंत्री, अगर हो तो मेरे सामने बुलाओ तब मैं मानूंगा। तो क्या प्रधानमंत्री आएंगे कि भाई मानो तुम, मैं हूँ प्रधानमंत्री? तो कृष्ण भी है, कृष्ण कह रहे हैं मूर्ख लोग हैं, मुझे नहीं मानते, है ना। लेकिन दूसरी बात और भी है, एक दूसरा पक्ष भी है कि जो ब्रजवासी हैं, जो कृष्ण के बहुत निकट हैं, वे भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, लेकिन उनको मूर्ख नहीं कहा है भगवान ने। जो ब्रजवासी हैं, उन कृष्ण के माता पिता हैं, उनके सखा हैं, वे भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वे अपना पुत्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं। तो उनके लिए ये शब्द नहीं भगवान ने प्रयोग किया है, उनकी निंदा यहाँ पर नहीं हुई है, आप समझ रहे, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण की योग माया कार्य कर रही। ये योग माया जो है कृष्ण के ज्ञान को ढकती है, और भी नहीं समझ पाते कृष्ण परमेश्वर हैं, इससे वो कृष्ण की ओर निकट आते हैं, कृष्ण की ओर निकट आते हैं, कृष्ण से और प्रेम करते हैं, उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता और बढ़ती है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा मित्र है, है ना, सखा है, तो प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती है। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं ये नंद नंद है, यशोदा है, ये भी तो मूर्ख हैं, ये भी कृष्ण को नहीं मानते भगवान, ये भी अपना पुत्र मानते हैं, ये सब मूर्ख हैं, इनको नहीं है, है ना। ये महामाया के प्रभाव में, है ना, व्यक्ति नहीं मानता है कृष्ण को भगवान, तो भगवान से दूर जाता है। महामाया जो है कृष्ण के ज्ञान को ढकती है ना, और उससे व्यक्ति कृष्ण से और दूर जाता है, और योग माया कृष्ण के ज्ञान को ढकती है, जिससे व्यक्ति कृष्ण की ओर निकट आता है, है ना। तो कृष्ण ने माता यशोदा को दो बार अपना मुख में विष दिखलाए, मुख में विष दिखलाए, तो और बड़ा आश्चर्य। अर्जुन को तो जो है मतलब कृष्ण ने अपना विराट शरीर दिखलाया, मुख के अंदर पूरा विश्व, और कितना बड़ा, पूरा बड़ा, ये तो और बड़ा आश्चर्य है। लेकिन माता यशोदा जो है चकित हो गई, नहीं कृष्ण फिर योग माया से फिर से भुला दिया, है ना, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते कि माता के प्रेम में बाधा पड़े, क्योंकि कृष्ण को क्या क्या चाहिए, हाँ बालक का प्यार चाहिए, वो चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं। तो कृष्ण जो है अपनी योग माया के द्वारा उनके ज्ञान को ढके हुए हैं, जिससे कि वे कृष्ण से प्रेम कर सकें, ठीक है ना। हाँ जी, दो बार, एक बार तो स्तन पिला रही थी, स्तन पी करके कृष्ण ने जम्हाई ली, तो माता ने देखा मुंह के अंदर, और दूसरी बार क्या, कब, मिट्टी खाई थी, है ना, जब माता ने डांटा कि तूने मिट्टी खाई है, नहीं माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, है तो मुंह खोल के देखा अपना, तो जब दिखाया, है ना, दो बार ऐसा हुआ, है ना। तो इस तरह से जो है योग माया से भगवान जो है ज्ञान को ढकते हैं, तो उससे भक्त जो है भगवान के और निकट आते हैं, है ना। तो वो अज्ञान नहीं माना जाता है, इसे अज्ञान नहीं माना जाता है कि माता यशोदा अज्ञान में है, ज्ञान ढका हुआ है उनका, ये वो अज्ञान की स्थिति नहीं है, लेकिन इनकी स्थिति अज्ञान की है, क्योंकि ये जो है कृष्ण से नफरत करते हैं, निंदा करते हैं, और जो है उपहास करते हैं कृष्ण का, है ना। तो ये जो है अज्ञान है, इनके लिए मूढ़ा शब्द का प्रयोग किया है, है ना। तो प्रभुपाद भी जो है इसी के बल पर मूढ़ा शब्द का प्रयोग करते थे, अंग्रेजी में बोलते हैं रास्कल, है ना। तो ये गीता के जो आचार्य हैं वो गीता के शब्दों का प्रयोग करते हैं और जो है यथा रूप, यही यथा रूप गीता है। कोई कहे कि नहीं नहीं आप तो निंदा कर रहे हैं, साधु को निंदा नहीं करना चाहिए, जब भगवान बोल रहे हैं तो फिर हम क्या बोलें, फिर ये नहीं 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 आप तो साधु हैं, आपको तो नहीं बोलना चाहिए, आपको निंदा नहीं करना चाहिए। जब कृष्ण कह रहे हैं मूढ़ा, है ना, तो फिर हम क्या कहें, तो इसमें फिर ये नहीं 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 हाँ साधु को तो जो है मतलब अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये गाली गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए साधु को। तो ऐसा नहीं है। और कृष्ण के जितने भी शब्द हैं ये कल्याण के लिए हैं, कृष्ण के जितने शब्द हैं ये ज्ञान देने के लिए हैं। अगर अज्ञान की निंदा करें, आप कुछ भूल कर रहे हैं और आपकी हम कुछ निंदा करते हैं कि ऐसी आप भूल कर रहे हैं, तो आपकी भलाई के लिए कहा जाता है। तो गीता में कृष्ण के जितने शब्द हैं वो कल्याण के लिए हैं, भलाई के लिए हैं, है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, बहुत सुंदर लेक्चर प्रभु जी ने हमें दिया। महामंत्र बोल के एक बार धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो तीन अनाउंसमेंट्स हैं। 26 जनवरी को 26 जनवरी को अद्वैत अद्वैत आचार्य